नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मीडिया कंपनी एनडीटीवी लिमिटेड को जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही में 8.08 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। एनडीटीवी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25.81 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध मुनाफा कमाया था। परिचालन से होने वाली एकीकृत आय 69.99 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 107.74 करोड़ रुपए थी। कंपनी का खर्च एक साल पहले के 83.33 करोड़ रुपए की तुलना में थोड़ा घटकर 81.98 करोड़ रुपए रहा। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्रवर्तकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका पर कंपनी का पैसा दूसरी जगह भेजने के मामले में बाजार नियामक सेबी को एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। सेट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास पूर्णकालिक सदस्यों की कमी होने को ध्यान में रखते हुए अपने पिछले आदेश में संशोधन किया और मामले की जांच के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, हम सेबी को एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने और उसके अनुपलब्ध होने पर उसके समकक्ष अधिकारी को मामले की सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने का आदेश देते हैं। नियुक्त होने वाले अधिकारी को तय समय में आदेश जारी करना होगा। इसके पहले सैट के 10 जुलाई के आदेश में संशोधन के लिए सेबी ने अपील की थी। सेबी ने कहा था कि 12 जून को चंद्रा और गोयंका के खिलाफ आदेश पारित करने वाले पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई और निदेशक इस समय उपलब्ध नहीं है। सेबी ने अपने फैसले में कहा था कि चंद्रा और गोयंका ने जी एंटरटेनमेंट का शीर्ष प्रबंधन संभालते समय उसके पैसे दूसरी कंपनियों में भेजकर खपाने की कोशिश की थी। इस वजह से उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कैनेडाई पेंशन योजना निवेश बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर देश के लिए पेंशन कोष की निवेश योजना के बारे में चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल CPPIB के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन ग्राहम की अगुवाई में आया था। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, वार्ता के दौरान CPPIB के प्रतिनिधिमंडल ने निर्मला सीतारमण से अपने वैश्विक दृष्टिकोण, भारत में अपनी मौजूदा परियोजनाओं के साथ साथ आगे की निवेश परियोजनाओं के बारे में बताया। ग्राहम ने देश में दीर्घकालिक निजी निवेश उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से पिछले कुछ साल में किए गए सुधारों की प्रशंसा की। बैठक में वित्त मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश अवसरों का जिक्र किया, जिसमें CPPIB रुचि हो सकती है। बजाज फिनसर्व का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 48% बढ़कर 1,943 करोड़ रुपए रहा। लाभ बढ़ने का मुख्य कारण मार्जिन और संपत्तियों में वृद्धि है। बजाज फिनसर्व बजाज समूह की वित्तीय सेवा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। लाभ वृद्धि के मामले में सबसे आगे समूह की प्रमुख कंपनी बजाज फाइनेंस रही। इसका शुद्ध लाभ जून तिमाही में 32% बढ़कर 3,437 करोड़ रुपए रहा। यह बीते वित्त वर्ष की जून तिमाही में 2,596 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि बजाज समूह की साधारण बीमा इकाई बजाज एलियांस जनरल ने जून तिमाही में 415 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसने 411 करोड़ रुपए कमाए थे। कंपनी ने बयान में कहा, कंपनी की कुल आय जून तिमाही में 47% बढ़कर 23,280 करोड़ रुपए हो गई। अडानी एंटरप्राइजेस की शाखा अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने बार्कलेज PLC और डाइचे बैंक से बृहस्पतिवार को $39.4 करोड़ जुटाए। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने शेयर बाजार को बयान में बताया कि इस कोष का उपयोग कंपनी की एकीकृत सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई की कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। बयान के अनुसार अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बार्कलेज PLC और डाइचे बैंक से $39.4 करोड़ जुटाए। कंपनी ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़े एकीकृत हरित हाइड्रोजन कारोबारों में से एक का परिवेश तैयार कर रही है। इसमें सौर मॉड्यूल और पवन चक्की विनिर्माण भी शामिल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों पर संबंधित पक्षों के साथ परामर्श न करने का पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आसियान देशों के साथ हुआ समझौता घरेलू उद्योगों के साथ पक्षपात करता है। इसके साथ ही गोयल ने कहा कि जापान और कोरिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों में भारत ने अपना बाजार इन देशों के लिए खोल दिया है, लेकिन उन देशों में भारतीय उत्पादों को मंजूरी नहीं दी गई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के साथ भारत का व्यापार समझौता 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ था। इसी तरह जापान के साथ भारत का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता अगस्त 2011 और दक्षिण कोरिया के साथ समझौता जनवरी 2010 में लागू हुआ था। बदले हुए हालात में भारत इन तीनों व्यापार समझौतों की समीक्षा की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि इन समझौतों में भारत के साथ समान बर्ताव नहीं किया गया है। गोयल ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, आसियान भारत समझौता सबसे खराब समझौता है। अगर इसे किसी ने पढ़ा होता तो पता होता कि ये भारतीय उद्योग के प्रति पक्षपाती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।